नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज के इस 14 मई के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और इन दिनों में हम प्रभु रामचंद्र के बारे में, रामायण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने आपको अयोध्या की संस्कृति के बारे में बताया। अयोध्या की संस्कृति जो है वो कृतज्ञता की संस्कृति है, मतलब धन्यवाद की भावना की संस्कृति है। जब प्रभु रामचंद्र को स्वर्ण वनवास हुआ तो सीता जी भी उनके साथ जाने को तैयार, वो भी चली गई। लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था फिर भी वो चले गए। भरत को राजा बनाने का योजना था लेकिन भरत को राजा बनने की इच्छा नहीं थी, वो भी वनवास में जाने को तैयार थे। प्रभु राम ने मना कर दिया, फिर वो वापस लौट के आए और जंगल में रहे, कुटिया में रहे। यानी कि मौका मिलने पर भी वो संसार का सुख लेने को तैयार नहीं है और जो अपने को सुख मिल रहा है वो दूसरे को देने को प्रयास कर रहा है। यानी कृतज्ञ है, बहुत धन्यवाद की भावना में है। हर मनुष्य को ये धन्यवाद की भावना अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। जो भी मिलता है उसके प्रति धन्यवाद की भावना होनी चाहिए, उसको कहते हैं ऋणी भावना, उसको कहते हैं कृतज्ञ भावना। कृतज्ञ यानी जो भी हमारे लिए किया गया है उसकी हमको याद है। ग यानी जानकारी, ग यानी ज्ञान, ज्ञान का जो ज्ञ है ना, कृतज्ञ, कृत यानी कृति, ज्ञ यानी पता होना। हमारे लिए जो भी किया गया है उसकी याद रखना, उसके बारे में जानकारी रखना और उसी के अनुसार चलना, इसको कहते हैं कृतज्ञता। तो अयोध्या में जो भी व्यवहार होता है वो सब इस प्रकार का व्यवहार है। और ऐसे कहा गया है कि मनुष्य जीवन में जब तक मनुष्य कृतज्ञ नहीं होता है, खास करके भगवान के प्रति, तब तक वो भगवान के प्रति भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। कृतज्ञता किसके लिए चाहिए? भगवान हमें हवा दे रहे हैं, हाँ, इतना बड़ा बल्ब लगा के रखा है, सारे लोकों में रोशनी आ रही है ना, 24 घंटा सब जगह रोशनी दे रहे, कभी 12 घंटा इधर कभी और कहीं, ऐसा रोशनी भगवान ने दे दिया है। आकाश से वर्षा आती है, पानी मिलता है, जमीन से भोजन मिलता है, धान्य आता है जो हम खा सकते हैं, जमीन से पेड़ उगते हैं, फल आते हैं वो हम खा सकते हैं, मुंह में कुछ डालते हैं उसके बाद में खुद कुछ करते नहीं है, अपने आप हजम हो जाता है। ऐसा मशीन दे के रखा है आपको कि यहाँ डालने के लिए केवल अपने को काम करना है, उसके बाद में सब अपने आप हो जाता है। समय पर नींद आती है, समय पर आँख खुल जाती है। और कितनी प्रकार की व्यवस्था करके दी है, जैसे आप लोग नाच रहे थे, हाँ, ये नृत्य करने की जो कला है वो केवल मनुष्य को भगवान ने दी है। ये सुंदर नृत्य जो है और सुंदर नृत्य से जो आनंद होता है वो केवल मनुष्य को मिला है। तो इसलिए कहा गया है कि जब हमको दुख होता है तो ये सब चीज़ों की याद करनी चाहिए। ये दुख तो हुआ है लेकिन फिर भी इतनी चीज़ हमको ऑलरेडी मिली हुई है। अगर दुख के साथ भगवान ने हवा भी बंद कर दिया, पानी भी बंद कर दिया आपके लिए, सूरज की रोशनी बंद कर दी, तो कैसे होगा? बहुत बड़ा कष्ट होगा। इसलिए इंग्लिश में कहावत है काउंट ऑन ब्लेसिंग्स, मतलब जो भी वरदान हमको प्राप्त हो गए हैं, जो भी हमारे लिए अच्छा अच्छा हो गया है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, उसको याद करना चाहिए। जब मन बहुत दुखी हो जाता है और तकलीफ में आता है, कष्ट होता है, तभी ये अच्छी अच्छी चीज़ों का जो लाभ हो गया है उसका याद करना चाहिए। चलो भाई, दो हाथ तो है, दो पैर तो हैं, दो आँख तो है, क्योंकि लोग तो अंधे हैं, लोग लंगड़े भी हैं, लोग बहरे भी हैं, कुछ लोग गूंगे भी है, लेकिन हम लोग कम से कम गरीब होंगे, लेकिन हमारे पास दो आँखें हैं, दो हाथ है, दो पैर है, दो आँखें चल रही हैं, कान भी चल रहे हैं, नाक से खुशबू बदबू भी आती है। तो ये सब के लिए धन्यवाद करना चाहिए। जब धन्यवाद करने को सीखेंगे तो अपने आप भगवान की भावना जागृत होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें उन्हीं की ओर से आती हैं। लेकिन जो आगे जो क्षेत्र है किष्किंधा, वो क्षेत्र जो है वो कृतज्ञता के खिलाफ, मतलब कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब क्या है, जो किया हुआ है उसको भूल जाना। जब आपके लिए कभी डिफिकल्टी में थे, आप सबको मदद किया, तो उसी को आप भूल जाते हो, समय आता तो उसी के खिलाफ लड़ते हो, ये भूलते हुए कि पहले उसने हमारे लिए कितना अच्छा किया था। तो कृतघ्न यानी कि जो हमारे लिए किया गया है उसको भूल जाना। इसका प्रमाण किष्किंधा में कैसा है, इसकी थोड़ी सी इतिहास ऐसा है कि जब प्रभु रामचंद्र ने अवतार लेने का सोचा तो सभी देवताओं को कहा कि आप वानरों के कुल में जन्म लेना, अपने अपना अंश जो है वानर कुल में उत्पन्न करना। तो सभी देवताओं ने एक एक करके जन्म लिया। तो इंद्र ने जन्म लिया वाली के रूप में, मतलब इंद्र का पुत्र बोल सकते हैं, इंद्र का अंश है वाली। और सूर्यदेव ने अपना अंश दिया सुग्रीव के नाम से, सुग्रीव के रूप में। वायुदेव ने दिया हनुमान जी के रूप में। अश्विनी कुमारों ने दिया नल और नील के रूप में। इस तरह से सभी देवताओं ने अपने अपने अंश को पुत्र के रूप में, वानर के रूप में भगवान की सहायता के लिए जन्म लिया। तो वाली बड़ा भाई था, ऐसे कहते हैं कि वाली इतना बलशाली था, इतना बलशाली था कि रावण ने तपस्या करके इतना बल प्राप्त किया था कि जिस पर कैलाश, जो पर्वत है कैलाश नाम का, जिस पर भगवान शिव बैठते हैं पार्वती के साथ, वो पूरे पर्वत को उन्होंने उठा लिया था अपनी भुजाओं से। इतनी रावण में शक्ति थी, सब देवता लोग डर गए थे उससे। वो रावण जब वरदान प्राप्त करके उन्मत्त हो गया, गर्व से एकदम उन्मत्त हो गया वो, तो वो सब जगह जाकर अटैक करने लगा, इसको अटैक किया, उसको अटैक किया, उसको ये छीन लिया, उससे ये छीन लिया, यहाँ से इन औरत को छीन लिया, वहाँ से वो सिंहासन को छीन लिया, कुबेर से जाकर पुष्पक विमान छीन लिया। ऐसे ही वो बाली के पास आक्रमण करने के लिए आया। उसको बहुत खुमखुमी थी अपने अंदर कि कोई योद्धा चाहिए युद्ध करने के लिए, ताकि मैं उसको टक्कर दे के परास्त कर सकूँ। तो उस वाली जो है वो तपस्या करने के लिए बैठा था, समुद्र किनारे तपस्या करने के लिए बैठा था। तो रावण ने वाली पर हमला किया, तो वाली ने केवल एक हाथ से रावण को दबोचा और अपने काख में दबा के रखा। ऐसे लेकर वो वाली उड़े आकाश में और दूसरे समुद्र किनारे जाके बैठ गए। रावण को अपने बगल में दबाकर उड़ गए आकाश में, और यहाँ समुद्र किनारे में दूसरे समुद्र किनारे में बैठ गए और 6 महीने तपस्या किया वैसे ही रावण को ऐसे पकड़ के। फिर रावण बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत विनती किया, 6 महीने तक छोड़ा नहीं उसको। और तपस्या करने का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं कि ऐसे करके पकड़ के रखा है, ऐसे नहीं, आराम से पकड़ा है और ध्यान करके बैठे हुए रावण को पकड़ के रखा है। इतने बलशाली थे वाली। फिर रावण ने बहुत रो रो के विनती किया, फिर वो वाली ने रावण को छोड़ दिया, बोला दोबारा आना नहीं मेरे पास, वो दंडवत करके रावण चला गया। ऐसा है, इतना बल था वाली के पास। तो वाली का तारा के साथ शादी हो गया, सुग्रीव छोटा भाई था, राज्य करने लगे किष्किंधा में। तो एक दिन क्या हो गया, एक बड़ा राक्षस आया, बहुत जोरदार राक्षस, उसने वाली पर हमला किया। तो वाली वे योद्धा था, बहुत वीर था वो, उसने युद्ध करना आरंभ किया उसके साथ में। हाँ, पत्थर से, चट्टानों से, पहाड़ के चोटियों से, पेड़ लेकर, पत्थर लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर, गदा लेकर, सबसे भयंकर युद्ध होने लगा उनका। युद्ध करते 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 वो कहाँ जाने लगे, दूर दूर तक, जंगल पहुंच गए, जंगल में पहाड़ में पहुंच गए, एक पहाड़ में पहुंचने गए, पहाड़ को चूर करने लगे, पहाड़ को उठा के फेंकने लगे, पहाड़ को टक्कर लगाकर पाउडर होने लगी उसकी। ऐसे करते करते के पहाड़ की गुफा में घुस गए वो। और पहाड़ की गुफा में घुसते ही बहुत जोरदार आवाज आती रही पहाड़ के अंदर से, गुफा से। कोई ये मुक्का मार रहा है, वो मुक्का मार रहा है, उसको उठा के पटक रहा है। बहुत देर तक गरजना, चिल्लाना, मारा मारी सब आवाज चलता रहा, और कुछ देर बाद में आवाज बंद हो गई। तो सुग्रीव जो था वो अपने भाई के साथ युद्ध करते करते पीछे पीछे आ रहा था क्या हो रहा है देखने के लिए। तो ये लोग पहाड़ के गुफा में घुस गए, तो गुफा के बाहर खड़ा रहा, और कुछ देर बाद में क्या हुआ, आवाज आना बंद हो गया। आवाज आना बंद होने के बाद में क्या हो गया, उसको आश्चर्य हो गया, अरे क्या होगा अंदर, दोनों मर गए कि क्या हुआ, एक मर गया कि क्या, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। बहुत देर सोचता रहा कि क्या हो गया होगा अंदर, कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद में ऐसा नदी के समान खून बहता हुआ गुफा से बाहर आया, तो उसको समझ में नहीं आया कि कौन मरा, मेरा भाई मरा कि राक्षस मरा। तो वह आश्चर्य में खड़ा रहा उधर, और खून आया और खून आया। तो उसको बाद में शंका होने लगी मन में कि हो सकता है राक्षस ने मेरे भाई वाली को मार दिया। तो उसको डर लगने लगा, अरे वाली जैसे आदमी को अगर कोई मार सकता है तो गुफा से बाहर आएगा मारकर तो मुझे भी मार देगा। इसलिए उसने क्या किया, एक बड़ा पत्थर लिया, चट्टान, और गुफा का मुंह बंद कर दिया उसने, और वो लौट के आया, राज्य में आया। तो सब लोगों ने बोला क्या हुआ, तो बोला ऐसे ऐसे हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है कि वाली की मृत्यु हो गई, वाली को मार दिया गया। तो सब लोगों ने बहुत दुख किया, दुख व्यक्त किया। तभी क्या करेंगे, चलो वाली गुजर गए तो क्या हुआ, अभी आप राजा बनो, आप उसके छोटे भाई हो, तो उसका राज्याभिषेक कर दिया, तो राजा बन गया। राजा बनकर राज्य का कारोबार चलाने लगा। यहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी साल तक युद्ध चला। अभी हमको आश्चर्य लगेगा कि कोई कुश्ती खेलेगा तो कितना घंटा खेलेगा, दो घंटा खेलेगा, तीन घंटा खेलेगा, हाँ। तो कृष्ण भगवान और जाम्बुवान के साथ में मुष्टि युद्ध हुआ था, बॉक्सिंग, 27 दिन चला था वो, 27 दिन। जरासंध का भी ऐसा ही भीम के साथ में युद्ध हुआ था, कई दिन तक चला वो, खाना पीना कुछ नहीं ब्रेक में, ब्रेक वगैरह कुछ नहीं, कंटिन्यूस खेलते थे वो, इतना बल था उसके अंदर, हाँ, 24 घंटा 7 दिन इतना मुष्टि युद्ध खेलने का कोई खाने का काम नहीं है। तो कई दिन भी थे उनका अंदर गुफा के अंदर युद्ध चलता रहा चलता रहा चलता रहा, इसका खून बहा, उसका भी खून बहा। उसके बाद में वाली ने गुफा के अंदर राक्षस को मार डाला, और राक्षस को मार के जब वो बाहर आने के लिए आया देखा तो अरे गुफा का दरवाजा बंद। तो उसने जोर से गुफा पर लत्ता प्रहार किया, चट्टान को हटा दिया, और बाहर आया देखा तो अरे भाई बाहर खड़ा नहीं, इधर गए भाई, लौट के गया अपने आश्रम, अपने राज्य में, किसके नाम में लौट के गया। तो क्या देख रहा है, ना भाई जो है सुग्रीव, उसको बाहर खड़ा रहना चाहिए था, वो लौट गया है, कई महीने बीत गए हैं, राजा बन के सिंहासन में बैठ कर आनंद ले रहा है, कोई सब नाच कर रहे हैं उधर, ये आराम से बैठ के आनंद ले रहा है उसका। तो गर्जना करते हुए प्रवेश करता है वो, तो सूर्य डर जाता है, सीधे जाकर सिंहासन पे पकड़ जाता है, वाली वाली सुग्रीव को पकड़ता है, वहीं उसको पीटने लगता है, इतना पीटता है कि सुग्रीव वहां से भाग जाता है। तो तुम्हारी ये हिम्मत, कुछ दिन के लिए मैं चला गया युद्ध करते करते, तुम लौट के आए राजा बनकर ऐश कर रहे हो। बहुत पीटता है उसको, हाथ पांव पैर सबसे इतना पीटता है कि बोलते राज्य में कभी आना नहीं यहां पर, भाग जाता है। तो वो सुग्रीव के जो कुछ मित्र होते हैं वानर सेना में, वो भी उसके साथ चले जाते हैं, हनुमान भी चले जाते हैं। अभी वो मारते 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 इतना मारता है उसको कि किष्किंधा के बाहर लेके जाता है, और बाहर भी मारते 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 लेके जाता है। तो ये भाग रहा है, उसके पीछे वाली भाग रहा है। तो ये वाली जो था उसने, उसका भी बड़ा बल का गर्व था, तो उसने एक बार एक ऋषि के क्षेत्र में जाकर जिसको जिसको उसने मारा युद्ध में, उसकी हड्डियां वो उधर फेंकता था एक जगह पर, तो हड्डियों का पर्वत बन गया था एक जगह पर, इतने राक्षस को उसने मारा था वाली ने। तो ऐसे राक्षस को मार मार कर उसने उनकी हड्डियों का ढेर जमा किया था। तो कभी कभी राक्षसों को मार कर ऐसे फेंकता था हवा में वो। तो एक बार वो जाकर ऋष्यशृंग पर्वत पर एक राक्षस गिर गया, जिसको उसने उठाकर फेंक दिया था ऐसा। तो ऋषि जो था ऋष्यशृंग ऋषि, वो बहुत क्रोधित हो गए, और कहते तुमने ऐसे सब युद्ध करने करते हुए मेरे तपस्या को भंग किया है, मतलब दोबारा यहाँ पर आओगे ना, यहाँ पर आते ही तुम मर जाओगे, ऐसा शाप दिया उसको। तो उसके बाद में वाली ने ऋष्यशृंग पर्वत पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि मालूम था कि वहाँ जाएंगे तो ऋषि का शाप लगेगा। तो ये सुगरी को पता था कि मेरे बड़े भाई को ऋषिशृंग पर्वत पर जाने के लिए शाप है, तो वो उसको तुरंत याद आ गया मार खाते खाते तभी वो भाग भाग कर ऋषिशृंग पर्वत पर चला गया। तो वो जब देखा वाली ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं यहीं छुपे रहो, यहाँ से बाहर निकलोगे तो मार डालूंगा, और सो वापस लौट के आते हैं। तब से लेकर सुग्रीव जो थे ऋषिशृंग पर्वत पर छुपे हुए डर के मारे रहते थे। उसके कुछ कुछ वानर सेना के मित्र और हनुमान जी के साथ और अंगद उसका पुत्र उसके साथ में, और चिंता कर रहे हैं क्योंकि वाली क्या करता है जैसे ही इसको मार के भगा देता है उसके पत्नी को अपनी पत्नी बना लेता है, उसकी खुद की पत्नी तो आरा है ही, सुग्रीव की पत्नी को भी अपनी पत्नी बना जबरदस्ती गुस्से में आकर। तो फिर प्रभु रामचंद्र आते हैं, आप जानते हैं ना सीता का हरण होने के बाद में कंब राक्षस को मार के कबंध को मार के वहाँ वहाँ आते हैं। तो वो कहते हैं कि वो पर्वत पर बंदर लोग हैं बैठे हुए हैं, उनके साथ में सुलह करना मित्रता करना फिर आपकी सीता का खोज करने में आपको मदद करेंगे और फिर आप रावण को मार सकते हो। तो वो आते हैं वहाँ पर, तो हनुमान जी वहाँ पर ऋषि बनकर आते हैं, कौन है ये दो लोग, कोई वाली के तो भेजे हुए कोई दूत तो नहीं है ना हमको मारने के लिए, तो भेष बदल के आए होंगे क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं कभी सूर्य उतरेगा कब उसको मारूंगा। तो हनुमान जी आके परखते तो बोले वो वाले के दोस्त तो नहीं है ये तो राम और लक्ष्मण है। तो उनको लेके जाते हैं, फिर मित्रता होती है, फिर वो लोग एग्रीमेंट करते हैं कि ऐसा है कि मेरा राज्य खो गया है, हाँ वाली ने मुझे मारकर भगा दिया है, मेरी पत्नी को भी छीन लिया है, तो तुम वाली को मारोगे तो मैं तुम्हें मेरी सेना के साथ में सीता को खोजने के लिए मदद करूंगा, ये होती है एग्रीमेंट होती है। तो पहले कहते हैं कि पहले मैं वाली को मारूंगा फिर आप मुझे मदद करना। फिर वो कहते हैं जाओ सुग्रीव ऋषिशृंग पर्वत छोड़कर वाली की किष्किंधा की सीमा में प्रवेश करो और वहां जाके गर्जना करो और चिल्लाओ और वाली को आह्वान दे दो, चैलेंज करो, वाली सावधान मैं तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए आ रहा हूं, मुझसे युद्ध करो। अभी जिसको मार मार कर पीट पीट कर भगा दिया गया है उसी को कहा जाए कि तुम जाओ अभी गर्जना करो तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। तो रामचंद्र कहते हैं कोई चिंता नहीं करो, मेरे धनुष को देख रहे हो इसकी आवाज सुनो। तो उसको खींचते हैं और जोरदार आवाज कर दे, हाँ इसकी जोर जी इतनी गर्जना होती है धनुष की आवाज की, मैंने कहा कोई चिंता मत करना मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा और जैसे वाली बाहर आएगा मैं उसको बाण मार के खत्म कर दूंगा। फिर राम जी के बाण की एक ऐसी महिमा थी कि राम जब बाण एक निकालते थे किसी को मन में रखकर कि इसको मारना है तो वो बाण दुनिया भर में उस आदमी का पीछा करके उसको मार कर लौटता था, कभी भी वो बाण उस लक्ष्य को मारे बिना लौट कर नहीं आता था। और उसका एक और भी प्रण था कि उसको मारने के बाद दोबारा लौट के उन्हीं के बाण की तोड़ीर में आके बैठता था। तो उन्होंने कहा मेरे बाण की महिमा आपने सुनी ना, चिंता मत करना मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, आप आगे आगे जाओ और गर्जना करो तो ये गए दर दर के पीछे देखते देखते कि है ना पीछे आ रहे ना ऐसे करके करके आगे जाते हैं और खड़े होकर गर्जना करते हैं वाली मैं सुग्रीव मेरा भाई चैलेंज कर रहा हूँ आ जाओ मुझसे युद्ध करो। तो वाली अपनी पत्नी के साथ में अंतपुर में बैठा रहता है, वो गर्जना सुनता है तुरंत उठता है। तारा कहती है अरे इसकी इतनी कैसे हिम्मत हो गई, कोई किसके साथ फ्रेंडशिप किया होगा उसने बलवान आदमी के साथ में। बोला कोई बात नहीं जो मुझे ललकारता है उसके साथ में युद्ध करता हूँ। तुरंत अंतपुर छोड़ के निकल आता है बाहर, देखता है तो वाली आश्चर्य होता है उसको, हाँ इतना डरपोक भाग गया हुआ भाई अपना इतना चोर से ऐठ के खड़ा है, चैलेंज करता है युद्ध करते दोनों बहुत जोरदार युद्ध करते हैं। वाली उसको इतना पीटता है इतना पीटता है इतना पीटता है कि इसको फिर भागना पड़ता है। तो सुग्रीव को बड़ा आश्चर्य होता है अरे इतना मैंने मार खाया फिर भी राम ने मार नहीं चलाया क्यों ऐसे किया बड़ा नाराज होकर लौटता है वो, पीट पीट कर मार खा खा कर लौट के आता है, बोलता है राम जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने जो वादा किया वो निभाया नहीं, मैंने आपके कहने पर उनको आह्वान दिया चैलेंज किया और युद्ध में इतना पीट कर लौट के आपने बाण क्यों नहीं चलाया। तो उन्होंने कहा कि तुम और सुग्रीव दिखने में इतने सेम हो कि मुझे तुम लोग गोल गोल घूम के युद्ध कर रहे थे, कभी वो पीछे, कभी तुम आगे, कभी तुम आगे तो वो पीछे, ऐसे गोल गोल। भाई बाण चलाऊंगा तो किसी गलत आदमी को लग गया तो कैसे चलेगा, ऐसे उन्होंने उनको बताया। लेकिन उसका अंदर का कारण थोड़ा अलग था कि राम ने बाण क्यों नहीं चलाया, क्योंकि जब सबसे पहले राम और लक्ष्मण जब ऋषिशृंग पर्वत पर आए थे और हनुमान जी ऋषि के रूप में आकर भेष बदल कर उनका पहचान किया, फिर अपने वेश में आए और फिर जब लौट के उन्होंने लेके गए, तो जब स्वागत किया गया उनका, तब सुग्रीव ने केवल राम का स्वागत किया था, लक्ष्मण का स्वागत नहीं किया था। उसको बैठने को जगह भी नहीं दिया, राम को बैठने को जगह दिया, आसन दिया, और लक्ष्मण खड़े ही रह गए। तो राम जी को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि लक्ष्मण कौन है, वो गुरु तत्व है। हाँ, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तो भगवान की कृपा नहीं हो सकती है। आप भगवान का भी सम्मान करेंगे लेकिन गुरु का सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान आप पर कृपा नहीं करेंगे। यहाँ पर भी राम लक्ष्मण बैठे ना, जगन्नाथ बलदेव कौन है, ये राम जी हैं और ये लक्ष्मण हैं, उनके ही अवतार है वो। तो जब तक बलदेव जी की कृपा नहीं होती तब तक राम की कृपा नहीं होती है, तब तक जगन्नाथ की कृपा नहीं होती है। उसी तरह से प्रभु रामचंद्र जी को ये इच्छा थी कि लक्ष्मण जी को भी वो वैसे ही स्वीकार करे जैसे मुझसे स्वीकार कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण ये फूल की माला लो और सुग्रीव के गले में डालो। तो जब सुग्रीव के गले में डालने गए तो गर्दन झुकाया ना सुग्रीव ने, अगर मेरे को माला पहनने का, मैं कैसे थोड़ी ऐसे थोड़ी हो गया, मैं गर्दन झुकाया कि नहीं, मतलब जो माला पहनाता है उसके सामने गर्दन झुकानी पड़ती है तब गर्दन में माला पड़ती है कि नहीं। तो जब ही लक्ष्मण जी माला लेकर गए तो उनके सामने सुग्रीव जी झुक गए, तो उनका काम पूरा हुआ, मतलब उन लक्ष्मण के सामने अपना सिर झुकाया तो लक्ष्मण ने उनको माला पहनाई। उसके बाद में कहा कि जाओ दोबारा ललकारो। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि राम जी इस बार आओगे ना, कम से कम जा रहा हूँ दोबारा पीटने के लिए, अपने आप को पिटवाने के लिए। तो गए और दोबारा चैलेंज किया, वाली क्या छुप छुप के कर रहे हो अपने औरत के गोद में, शयन गृह से बाहर आ जाओ, अगर वीर हो तो अपने बीवी के पल्लू के नीचे से बाहर चले आओ। इसे जोर से चिल्लाता है, तभी वो अंतपुर में रहते हैं अपनी बीवी के साथ, तुरंत निकलता है बाहर। तो उसकी बीवी कहते हैं, अरे स्वामी जिसको तुमने पीट पीट कर अभी भगा दिया था वो थोड़े ही समझ कर लौट के आया है, इसका अर्थ क्या होता है। जो किसी को पीटा हुआ है आपने तो कम से कम दो चार साल तो मुंह दिखाएगा नहीं आपको। कुछ तो बटर बटर लोनी में नहीं खाएगा, तकत कमा के फिर आवाज कर सकता है, लेकिन ये कुछ दिन के बाद लौट के आया है, मतलब किसी बड़े बलवान व्यक्ति के साथ में उसने मित्रता किया है, उसके बल पर इतना जोर से चिल्लाने के लिए वो आया हुआ है। बोला मैं डरता नहीं किसी से, वो मुझे चिल्ला रहा है, ललकार रहा है तो मैं आ रहा हूं। तो जाता है, तो युद्ध करता है, युद्ध शुरू करते ही कुछ ही मिनट के बाद राम जी पेड़ के पीछे से वाली पर बाण मारते हैं और वाली जो है छाती में बाण लेकर गिर जाता है। तब वाली को सब रहस्य समझ में आता है कि सुग्रीव ने प्रभु रामचंद्र से मित्रता की है और ऐसा एग्रीमेंट किया है कि मुझे मारेंगे फिर सीता को खोजने में मदद करेंगे। यह एग्रीमेंट करने के लिए राम जी ने कहा था कि मैं आपकी सहायता करूंगा, इसी षड्यंत्र के अंदर सामने मुझसे युद्ध किया गया और पीछे से बाण मारा गया। छाती पर बाण ले धारण करते हुए जमीन पर गिरता है वो, तब राम जी सामने आते हैं। तो वाली कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुमको मुझे मारना था तो तुम मुझे चैलेंज करते, तुम मुझे ललकारते, फिर मैं तुमसे युद्ध करता, फिर तुम मुझे मार डालते, तो कम से कम मुझे दुख नहीं होता मरने का, लेकिन तुमने इसको आगे करके, इस कमजोर व्यक्ति को आगे करके पेड़ के पीछे छुपकर मुझ पर वार किया है, ये कोई वीरता का लक्षण नहीं है। तो प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि आप वानर हो, यानी कि आप जानवर हो, और मैं मनुष्य हूँ और मैं राजा भी हूँ, और राजा होने के नाते मुझे शिकार खेलने का अधिकार है, और जो उद्दंड जानवर होते हैं उनको मारने का भी अधिकार है। आप उद्दंड कैसे, आपने अपने भाई के वो बिना समझे हुए उसकी बात ना सुनते हुए वो समझा रहा था आपको कि मैंने आपको गलत समझ के ऐसा नहीं किया है, मुझे लगा था आपका ध्यान हो गया इसलिए मैंने ऐसा समझाने की कोशिश करता है, आपने कुछ सुना नहीं, फिर उसको इतना पीटा, उसको राज्य से बाहर कर दिया, फिर उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, मतलब एक तरह से तुमने व्यभिचार किया है। उद्दंड वानर हो, तो ऐसे उद्दंड जानवर का वध करने का राजा को अधिकार होता है, इसलिए मैंने आपका वध किया है। ऐसे बहुत लंबी उसमें संवाद है रामायण के अंदर। फिर वाली जो है भगवान की मधुर मधुर सुंदर सुंदर पावरफुल बातें सुनकर उसका हृदय शुद्ध होता है। एक तो राम के बाण उसकी छाती में घुसा हुआ है, वो भी एक कृपा है उसके ऊपर। हाँ, क्योंकि राम का बाण लगना कोई बुरी बात नहीं है। राम का बाण या राम का गले लगाना दोनों एक समान है। राम के सामने जीना, राम के सामने मरना, वो भी एक समान है, क्योंकि प्रभु राम के साथ में हो रहा है। तो राम के बाण के वेदना के द्वारा उसका हृदय शुद्ध होता है, फिर राम की वाणी से, राम के संग से उसका आत्मा शुद्ध हो जाती है। फिर आखिर में प्रभु राम का नाम लेते लेते वो देह छोड़ देता है, मर जाता है। सुग्रीव को भी आशीर्वाद देता है बड़े भाई के नाते, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। फिर सुग्रीव को प्रभु रामचंद्र जो है वो राजा बना देते हैं, अभी वाली के आशीर्वाद से। वाली तो मर जाता है, बोलता है तुरे कोई बात नहीं, आप राजा बनो, राज्य को चलाओ अच्छी तरह से। तो सुग्रीव जो है जब राजा बनते हैं तो उसके बाद में चतुर्मास शुरू होता है। चतुर्मास में कोई प्रवास नहीं करता, यात्रा नहीं करते। तो प्रभु रामचंद्र जो सीता जी के खोज में प्रयास करते थे ना, ढूंढ रहे थे ना, आगे आगे बढ़ते थे, तो आगे बढ़ना उन्होंने छोड़ दिया। चार महीना अभी कुछ नहीं करेंगे, चार महीना एक जगह व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, और चार महीने के बाद फिर सीता की खोज शुरू करेंगे। तो चार महीने इनको ब्रेक मिल गया ना राजा बनने के बाद, तो सुग्रीव जी सब कुछ भूल जाते हैं कि प्रभु रामचंद्र ने इतना सब कार्य किया, अपना वादा निभाया, और ऐशो आराम में मग्न हो जाते हैं। औरतों के सामने उनका नित्य देखना, शराब पीना, राज का उपभोग करना, ऐश करना भूल जाते हैं। चतुर्मास समाप्त होता है, फिर भी ये मशगूल है आनंद में। तो राम जी के लिए हर एक समय हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीता जी वहाँ पर तड़प रही है अकेले। चार महीने बीत जाते हैं, एक चार महीने खत्म होते ही पहले दिन लक्ष्मण पूछते हैं, भैया क्या हो रहा है, सुग्रीव कहाँ है? बोले आता ही होगा। एक दिन जाते हैं, दो दिन जाते हैं, एक महीना गुजरता है, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आता है, बोले अरे हमारे से दिया हुआ राज्य भोगने के लिए हमारा वादा भूल गए। लक्ष्मण इतना क्रोधित होकर अपना धनुष बाण लेकर जाते हैं, गर्जना करते हुए, चित्कार करते हुए, यहाँ तक कि इतनी जोर से गर्जना करते हैं कि नाच गाने में मशगूल सुग्रीव जो है वो कांपने लगता है, नाचने वाली स्त्रियाँ भाग जाती है सब लोग। लक्ष्मण जोर से गर्जना करता है कि एक ही बाण में दोबारा किष्किंधा क्षेत्र को जलाकर भस्म कर दूंगा सुग्रीव के साथ, जाओ अपने राजा को जगाओ। तो हनुमान जी आते हैं, लक्ष्मण से बात करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि शांत हो जाओ लक्ष्मण जी, मैं मेरे भाई को समझाता हूँ। तो लक्ष्मण का क्रोध, उसके धनुष की तणत्कार, उसकी गर्जना, उसको देखकर लक्ष्मण समझ जाते हैं, हनुमान समझ जाते हैं कि अकेले ही काफ़ी हैं, ये पूरे वानर सेना को समाप्त कर देंगे, किसके अंदर राज्य को समाप्त कर देंगे। जाते हैं, फिर वो सुग्रीव को जगाते हैं, सुग्रीव बंद करो ये सब ऐसा आराम, आपने वादा किया था कि आप सीता जी को खोज करने के लिए वानर सेना के साथ मदद करेंगे। तो फिर वो होश में आते हैं और लक्ष्मण जी को दरवाजे पर आकर चरण में गिर जाते हैं, उनके माफ़ी मांगते हैं, तब लक्ष्मण शांत हो जाते हैं। तो ये कौन सा कल्चर है, कृतज्ञता है ना, तुमने उसके लिए तुमने जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया, तुम्हारा वादा पूरा करने का कुछ काम नहीं, थोड़ा इस राजा बनने का मौका मिला सब भूल गए सब। ये किष्किंधा का ये कुछ कुछ हमारे जीवन से मिलता जुलता है ना, हाँ, हमको जब लाभ चाहिए तो हम लोग पीछे पीछे भागते हैं, लाभ होने के बाद किसी को मदद करने के समय आता है तो भूल जाते हैं हम लोग। ऐसा करने से क्या होता है, भगवान की कृपा नष्ट हो जाती है। और उधर क्या कल्चर है, रावण के दरबार में एक भाई भगवान का भक्त है, एक भाई राक्षस है, विश्वरवा मुनि के पुत्र हैं सब लोग। वो क्या बोलते हैं विश्वरवा मुनि की, जब तुम इसको जन्म दिया है रावण को, ये रावण यानी राव न, इसका मतलब जानते हो क्या है, उसका जन्म होने के बाद में पूरी दुनिया रोई डर के मारे, इसलिए राम पड़ा रावण, यानी कि जिसने पूरी दुनिया को रुदन करने के लिए मजबूर किया, रोने के लिए मजबूर किया। आमतौर पर जब जन्म होता है तो जिसका जन्म होता है वो रोता है और बाकी सब लोग हंसते हैं, और पेड़े बर्फी बांटते हैं, है ना। इसका जन्म जब हुआ तब तब दुनिया रोई डर के मारे, इतना भयंकर भूकंप हुए, हाँ समुद्र को तूफान आया, आंधी आई, चक्र झंझावात निकला सब जगह पर, अशुभ अशुभ चिन्ह दिखाई देने लगे। ये रावण के जन्म की कथा है। प्रभु रामचंद्र के जन्म की कथा सुनते हैं हम लोग तो हमको आत्मा की शुद्धि प्राप्त होती है, रावण के जन्म की कथा सुनने पर दिल में भय पैदा होता है। लेकिन तीसरा जब पुत्र हुआ तब विश्वा मुनि ने कहा कि ये पुत्र जो है तुम्हारा ये वैष्णव है, ये भगवान का भक्त है, नारायण का भक्त है, इसी के माध्यम से तुम्हारा राक्षस कुल जो है वो बचेगा, बड़े के वजह से उसका नाश हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बचेगा इसकी वजह से बचेगा। तो रावण कुंभकर्ण दो और एक विभीषण, विभीषण के घर में आपको बताया लास्ट टाइम सब कमरे में राम 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 लिखा था, तो राम रावण लौट के आए थे दर्द की गुस्से से कि तुम मेरे शत्रु का नाम घर पे लिखा लिख के रखा है, तो क्या बोलते हो याद है कुछ लास्ट टाइम बताया था मैंने, बोले राम वो राम का नाम नहीं लिखा है मैंने, बोलते हैं आपका रा रावण का और आपकी पत्नी का म मंदोदरी का मिलकर राम लिखा है मैंने। हाँ आगे याद रहेगा ना आपको। तो रावण का गुस्सा ठंडा करने के लिए वो बताता है, उसके मन में राम का ही नाम है लेकिन वो बताता है उसको खुश करने के लिए कि ये आपका रा और आपके पत्नी का भाभी जी का म मिलकर राम लिखा है मैंने आप। तो अभी हमेशा जब से सीता का हरण किया है तब से भाई उसको बोल रहा है कि भैया आप जो किया वो सही नहीं किया है, आज तक आपने इतना पराक्रम किया, इतना पराक्रम करके सामने जाकर चैलेंज देकर देवताओं को परास्त करके उनका राज्य छीन लिया आपने एक वीर की तरह, हाँ भले आपने कुबेर का पुष्पक विमान चोरी किया होगा लेकिन कुबेर के साथ युद्ध करके उसका सामान आप लेके आए हो, हर बार आपने युद्ध वीरता के साथ युद्ध किया है लेकिन इस बार आपने वीरता का साथ युद्ध नहीं किया, काम नहीं किया है, आप भेष बदल कर गए थे, ऋषि बदल बन के गए थे, उसको फंसाया आपने, राम जी को दूर भगाया, मारीच को हिरण बनाकर उसको ललचाकर दूर ले गए आप जंगल में, फिर जब दोनों पुरुषों के बिना वो स्त्री हो गई तो अकेली स्त्री के सामने आप ऋषि बनकर गए, उसको बहकाया, उसको फंसाया, फिर रूप धारण करके उसको उठाकर लेके आए, ये तो कायरता का लक्षण है। अगर आप वीर होते, अगर आप उसकी पत्नी आपको चाहिए होती तो आप उसका युद्ध करते, उनको युद्ध में परास्त करके उसकी पत्नी को घर पर लेके आते, देखिए तुमने उसको चीटिंग किया है, ये कोई वीरता का लक्षण नहीं है और धर्म के खिलाफ भी है, आप तो ब्राह्मण के पुत्र हो, विश्रवा मुनि के पुत्र हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हर बार रावण कहता है ये तो कायरता का लक्षण है क्योंकि तुम राम से डरते हो इसलिए तुम्हारे मुंह से नीति की बातें आ रही है, अच्छी अच्छी धर्म की बातें क्यों तुम्हारे मुंह से निकल रही है, क्योंकि तुम डरे हुए हो, तुम डर गए हो राम से, राम के धनुष से तुम डर गए हो इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन मेरी तलवार में चंद्रहास खड्ग में मुझे विश्वास है, मैंने इस तलवार से सारे देवताओं को परास्त कर दिया है, वो तो मनुष्य है तुच्छ मानव है वो क्या करेगा मुझे। लेकिन हर बार जब भी वो सलाह देता है भाई को अपने तब वो उसको निंदा करता था उसकी, तो एक ऐसा कल्चर है, एक भाई है जो पाप कर रहा है, एक भाई दूसरे भाई को पाप से बचाने का प्रयास कर रहा है, तो आखिर में रावण क्या करता है उसको लात मार कर गिरा देता है, पूरा छाती पर लात मारता है, वो पूरा सीढ़ी से गिरते 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 जमीन पर आता है, उसके सामने रावण के बच्चे सब सेनापति लोग सामने खड़े हैं, उसके सामने भाई को लात मारता है, वो जो राजा भाई है वो अपने भाई को सभी सेनापतियों के सामने अपने पुत्रों के सामने लात मारकर अपमानित करता है, और सब उसके लड़के जो है वो जोर जोर से हंसते हैं, बोला ये काका जो है वो कायर काका है, हमेशा ऐसी ही बातें करता है, वीरता की बातें करता ही नहीं है, बोले पिताश्री आप डरो मत, जो आपने किया है वो आपका अधिकार है, ऐसे पिताजी को बहकाते हैं सब लोग, धर्म के विरुद्ध बातें करते हैं। तो ये कल्चर कौन सा है, रावण का कल्चर, लंका का कल्चर है, इसको कहते हैं विकृति, विकृति यानी क्या, परवर्जन मतलब गलत काम करना, विकृति यानी गलत के भी आगे, धर्म के विरुद्ध पागलपन की तरह जो कार्य करता है उसको विकृत कार्य करते हैं, जिसकी बुद्धि सही जगह पर नहीं रहती है, ये रावण के लंका का लक्षण है। कुछ कुछ हमारा जीवन का लक्षण भी ऐसा ही है, रावण का लक्षण क्या था, जहां पर भी दिखेगा अच्छा चीज वो मेरा होना चाहिए, वो किसी का गौर क्यों ना हो वो मेरा ही होना चाहिए, या तो प्रेम से दो या तो बोलने से दो या तो हम जबरदस्ती आपसे छीन लेंगे। जैसे अमेरिका कैसे है, जहाँ पर तेल है वहाँ पर सेना भेजती है, उस राज्य पर काबू करती है और तेल अपना बना देती है। इसलिए इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, हाँ जो जो हमारे हित के खिलाफ है उसका वध कर डालो। जब चाहिए था तभी ओसामा बिन लादेन को पोषण किया, उसका बड़ा बनाया उसको अपना हित साधने के लिए। जब ओसामा बिन लादेन उनका शत्रु बन गया तो सीधे घुसे उसके घर पे, बॉम्ब डाला उसके ऊपर, उसको पकड़ा, उसको मार डाला। यही कल्चर रावण का था, जो जो चीज़ चाहिए वो बल से छीन लेना, अपने लिए कर लेना। दुनिया की हर वस्तु अपनी होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। स्वामी मैं हूँ, भगवान नहीं है, यही उसका लक्षण था। तो हमको ये सब तीन जो मैंने बताया आपको कल्चर, एक कल्चर था अयोध्या का, उसको कहते हैं संस्कृति। एक कल्चर है किष्किंधा का, उसका और एक नाम है प्रकृति। यानी प्रकृति मतलब क्या, भूल जाना सब कुछ, समय के अनुसार सब भूल जाना। तो दूसरा नाम कल्चर का है संस्कृति का कृतज्ञता, जो किया हुआ है उसको याद रखना। और किष्किंधा का दूसरा नाम है कृतज्ञता, जो किया हुआ है उसको भूल जाना। पहला जो है वो याद रखना, दूसरा हुआ है भूल जाना। और तीसरा कल्चर रावण का जो है लंका का, वो उसके एकदम विपरीत है। जो जो भी अच्छा दिखता है वो धर्म का साथ में हो, धर्म के विरुद्ध हो, बलपूर्वक छीन देना उसको। और किसी का अच्छा सलाह नहीं सुनना। रावण को अपने ससुर ने बताया, उसका नाम था मय दानव, जिसकी कन्या थी मंदोदरी, उसने भी बताया। जहाँ जहाँ मारिच ने भी सुनाया, मारिच उसका चचेरा अंकल थे उसके, मारिच ने भी सुनाया कि मत करो ऐसे, ये रावण, ये राम का जो नाम है वो उसका र सुनते भी मैं कांपने लगता हूँ, इसका बाण की चोट खाकर मैं कितना 12,000 मील समुद्र में फेंका गया था। तब ये राम की उम्र 12 साल की थी, अभी वो 24 साल का हो गया है। समझो जरा, समझने की कोशिश करो। फिर भी रावण बोलता है कुछ नहीं, मेरी आज्ञा पालन करो नहीं तो अभी तुम्हारा वध कर देता हूँ। मतलब जो तुम्हारे हित में सलाह दे रहा है तुमको वो भी सुनने को तैयार नहीं है, इतना मद है उसके अंदर। तो रावण का कल्चर कौन सा है, मद का कल्चर, मतलब गर्व का कल्चर है। अपने बल पर इतना गर्व है उसको कि उसको सत्य भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सत्य क्या है। सत्य क्या है कि धर्म के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, ये सत्य है, फिर भी उसको इतना शक्ति पर अपना गर्व है कि फिर भी वो समझ में नहीं आ रहा है उसको। तो ऐसे ससुर ने बताया, फिर मारिच ने बताया, और विभीषण ने भी समझाया, और कई लोगों ने समझाया, पत्नी ने उसके कितना समझाया उसको। उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके और अन्य हजारों रानियाँ हैं अंतपुर में, आपको क्या चाहिए आप बताओ, आपकी हर इच्छा को हम पूरी करेंगे। लेकिन वो अबला स्त्री जो तुम छीन कर लाए हो, जिसके आपको, जिसकी इच्छा नहीं आपके साथ में रहने की, आपको शाप भी मिला हुआ है कि आप किसी स्त्री को बलपूर्वक कुछ करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नल कुबेर ने, रंभा के पति ने उनको शाप दिया था। तो आपको इसका भोग लेना मुमकिन नहीं है, आप कितना भी चाहोगे तो सीता आपको नहीं मान सकती है कि आप उसके पति हो। इतना तुमने किया है कि मायावी जो सर है राम का कटा हुआ, वो भी प्रस्तुत किया था उसको, देखो तुम्हारे पति का वध हो गया है, उसका मर गया है वो तुम्हारा पति, अभी तुम कंपनी मेरी पत्नी बन जाओ। तो जब वो आंख बंद करके राम का नाम लेते तो वो सर गायब हो जाता है, क्योंकि माया का शरीर होता है ना, मायावी शरीर होता है, मायावी सर होता है वो। तो मंदोदरी बोल रही है कि इतना सब तुमने प्रयास किया उसको बलपूर्वक, उसको समझा बुझा के, उसको गिड़गिड़ा के, हाथ जोड़ के, लेकिन वो तैयार नहीं है, तो क्यों तुम आग को हाथ लगा रहे हो? इस आग को हाथ लगा के तुम जल जाओगे, क्योंकि धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हो, अपने पुण्य को समाप्त कर रहे हो। फिर भी उसके दिमाग में प्रकाश नहीं गिरा। और आखिर में क्या हुआ, जो उसका पुत्र था इंद्रजीत, तो आप सोचो बराबर से कि रावण की मति कैसी है, इतना सब समझाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। और फिर बोलते कोई बात नहीं, चलो अभी आप, फिर कुंभकर्ण उठता है, उसको जगाते हैं, बोला भैया तुम उठ जाओ, अभी तुम इतना बड़ा समान हो रहा है, बोला क्यों उठाया जा रहा है मुझे, मेरा समय नहीं हुआ उठने का अभी, और तुमको उठाया जा रहा है क्योंकि अभी राम के साथ युद्ध किए कर रहे हैं हम लोग। क्या राम के साथ युद्ध कर रहे हो, तुमको पता नहीं राम कौन है? तो वो बताता है कि भैया तुमने गलत काम किया है, ये राम कोई मानव नहीं है, ये तो भगवान है, तुमने उसकी स्त्री पर हाथ डालने का प्रयास किया है, बड़ी मूर्खता का काम किया है। तो रावण कहता है तुम्हारे तरफ से ये बातें सुनने के लिए तुमको जगाया नहीं था हमने। उसका अपना दिमाग में वही बात चल रही है, तुमको ये बातें सुनानी है दोबारा सो जाओ, कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले युद्ध करूंगा। तो कुंभकर्ण बोलता है चलो कोई बात नहीं भैया, नाराज मत हो जाओ, जो मुझे कहना था आपके लिए अच्छा था इसलिए बताया, लेकिन अगर तुम मरने वाले हो तो साथ में मैं भी मरने को तैयार हूं। भागने वाला नहीं हूं, युद्ध करूंगा मैं, लेकिन युद्ध करने के पहले मुझे लगा कि आपको सत्य बताना चाहिए, नहीं सुनने के मूड में हो तुम्हारा गुड लक बैड लक, मैं कोई क्या कर सकता हूं। फिर कुंभकर्ण का भी देहांत होता है, जानते हो ना आप, एक एक करके सब राक्षस मर जाते हैं, तो कुंभकर्ण में मर जाता है। उसके बाद में रावण का पुत्र जो है इंद्रजीत, जिसने इंद्र का पराभव किया है, वो जाता है युद्ध में। उसने तो इतना पराक्रम किया था कि उसने ब्रह्मपाश डालकर हनुमान को भी बंदी में बना दिया था ना एक बार जब वो आया था। पिताश्री आप कष्ट ना करें, मैं जाऊंगा युद्ध करूंगा। लेकिन इंद्रजीत जो है वो लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, तो ब्रह्मास्त्र जो है वो लक्ष्मण को प्रदक्षिणा करके लौट के आता है और लक्ष्मण को छूता तक नहीं है। फिर इंद्रजीत सुदर्शनास्त्र भेजता है, यानी कि चक्र जो है ना भगवान विष्णु का, वो भेजता है लक्ष्मण के ऊपर, वो भी जाता है लक्ष्मण को प्रदक्षिणा करके दोबारा लौट के आता है। फिर शिवजी का अस्त्र जो है त्रिशूल पाशुपतास्त्र, वो छोड़ता है लक्ष्मण के ऊपर, वो भी लक्ष्मण को प्रदक्षिणा करके लौट के आता है। उसके गुरु ने उसको सिखाया था कि ये तीन अस्त्र जो है ये सबको मार सकते हैं, केवल भगवान विष्णु को नहीं मार सकते, क्योंकि विष्णु के ही अस्त्र है, विष्णु के ऊपर ये अस्त्र नहीं जा सकते। तो जब ये लक्ष्मण के जाकर प्रदक्षिणा करके लौट के आते हैं तो ये समझ जाता है कि ये तो दोनों भाई भगवान के अवतार हैं, तो वो युद्ध छोड़ के पिताजी को मिलने आता है। बोला पिताश्री मैं आपको चेतावनी देने को आया हूं, ये दो मानव जो है ये मानव नहीं है, ये साक्षात भगवान के अवतार हैं, आप जिनकी पूजा करते हो शिवजी उनके भी आराध्य है ये दोनों। फिर भी रावण की मति इतनी भ्रष्ट है, वो सोचता है बेटा डर के मारे आए हो क्या, सेना में तुम्हारा परास्त पराजय होने लगा इसलिए डर के मारे आकर ऐसी बातें करने लगे, आज तक ऐसी बातें नहीं की थी, जब काका जी बता रहे थे उपदेश तब तुम उसको गाली दे रहे थे, काका को भगाने का तुमने आदेश दिया था और काका को जब लात मारा तब तुम हंसे थे, वही तुम हो क्या आज, इतने बदल गए, मतलब भय के मारे तुम पीड़ाग्रस्त हो गए हो, भय से कांप रहे हो, इसलिए मुझे उपदेश करने को आए हो, तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो मत करो, जाकर घर पे सो जाओ, मैं मेरा युद्ध लड़ूंगा अपने आप ही। दे पापा पिताश्री मेरी बात को गलत मत समझो, ये नहीं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं दोबारा लौट के युद्ध करने वाला हूं, मैं जाके उनके हाथों मर जाऊंगा, लेकिन सोचा कि बीच में आकर आपको जगाऊं, आप जिस भ्रम में हो उससे मैं आपको जगाऊं, बताऊं सत्य क्या है, आज तक मैंने आपके पक्ष में बात किया लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं कि सत्य क्या है, मैं इन दो भाइयों का सत्य आज समझ चुका हूं, कृपा करके अभी भी मेरी आपको सलाह है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप तो कम से कम जीवित हो, आपके द्वारा और राक्षस वंश बन सकता है, कम से कम अभी आप सीता जी को लौटा दो और आपको अपने राज्य को और अपनी जनता को बचा लो, बहुत भाई और बहन ऑलरेडी मर चुके हैं, भाई और जो रानर वो राक्षस की सेना में लोग मर चुके हैं। फिर भी रावण को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जो वीर योद्धा है बेटा इंद्रजीत, वो मुझे युद्ध छोड़कर आकर बता रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा अपना कभी होना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे कहा गया है कि जब हमारा विनाश का समय आता है ना तो हमें बहुत सूचनाएं मिलती है, बहुत लोग आगे बताते हैं ऐसा मत करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो, एक दो चार बार हम लोग दुर्लक्ष कर सकते हैं, लेकिन बार बार लगातार लोग आकर एक ही बात बार बार कहते हैं तो हमको समझना चाहिए कि ये हमारे हित में है, इसको दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए। जो कभी ऐसा बोल नहीं सकता है वो इंद्रजीत भी आकर बताता है कि पिताश्री अभी भी युद्ध रोक सकते हो, सीता जी को लौटा दो। तो वो इतनी निंदा करता है अपने बेटे की कि तुम कैसे वीर हो, मुझे शर्म आती है मेरे पुत्र बोलने के लिए तुम्हें, तुमने मैंने यही सिखाया था आज तक, वीरता सिखाई थी तुमने मैंने तुमको मैंने, और तो युद्ध भूमि छोड़कर भाग के आए हो और मुझे सलाह दे रहे हो ऐसी डरपोक जैसी कायर बनकर, जाओ तुम युद्ध छोड़कर घर पे चले जाओ अपनी पत्नी के गोद में जाके सो जाओ। पिताश्री मेरी वीरता को मत ललकारो, मैं जा रहा हूं, चले जाता है। और फिर लक्ष्मण जी उसको मार देते हैं। फिर इतना आश्चर्य होता है इंद्रजीत की मौत हो गई, तो कुछ बचे कुचे जो लोग हैं बताते हैं उनको कि अभी भी तो जो समय है, और अभी तो क्या समय है, अभी सब पुत्र मर गए, सभी सगे संबंधी मर गए, अभी जिक्र करना भी क्या है, सीता तो मानने वाली है नहीं, तो ये इनको जीत कर भी करना क्या है मुझे, युद्ध करूंगा मैं, युद्ध कर जाता है फिर मर जाता है। ये जो मूर्खता का गर्व के ऊपर जो मूर्खता होती है ना, गर्व के कारण, बुद्धि तो बहुत है, बुद्धि ज्ञान बल सब कुछ है, लेकिन गर्व इतना है, इतना अहंकार है, उसके कारण क्या होता है समझ में नहीं आता है कुछ। इसलिए बहुत ज़्यादा बुद्धि होना भी बहुत मुश्किल वाला काम होता है, जो बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है बहुत ज़्यादा सोचता है कि और कैसे मजा किया जाए, बहुत सोच सोच कर रिसर्च करता है कैसे और आनंद लिया जाए, और फिर वो अपने ही गड्ढे में गिर जाता है बनाए हुए। तो ये कल्चर जो है श्रीलंका का कल्चर है, तो हमारे जीवन में हमको भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में अयोध्या का कल्चर जो है वो अपनाना चाहिए। अयोध्या मतलब क्या, जहाँ पर कभी युद्ध नहीं हुआ, किस चीज़ का कोई संघर्ष नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा अयोध्या। जो भी युद्ध हुए अयोध्या के बाहर हुए, अयोध्या में कोई युद्ध नहीं हुआ, यहाँ तक शनि का भी प्रवेश नहीं हो सका उसके अंदर, शनि भी अंदर नहीं आ सका, अंदर आने के पहले बाहर ही बाहर युद्ध किया गया, शनि को वहीं से शनि चले गए, बोले नहीं आएंगे अयोध्या के ऊपर। ये प्रभु रामचंद्र के जगह का बल है, जहाँ पर वो रहते हैं उनके होने से सब लोग ऐसी भावना में आते हैं, त्याग की भावना में आ जाते हैं, उनको मिल रहा है राज्य लेकिन फिर भी त्याग की भावना में है। ये कल्चर जो है हमारे लिए पालन करने योग्य कल्चर है, और भक्ति विधान में हमको क्या करना चाहिए, मौका मिल रहा है फिर भी हमको दूसरों को सेवा में मदद करनी चाहिए। दूसरों को कैसे मदद किया जाए, उनके संकट में, उनके दुख के समय, उनके पीड़ा के समय, उनकी यातना के समय, बीमारी के समय उनकी कैसे हेल्प की जाए, अपना सुख दुख छोड़कर उनके हेल्प में कैसे चला जाए, ये हमको सीखना है। ये कल्चर अयोध्या का है। भरत जी को अयोध्या में राज दरबार में बैठकर राज वस्त्र पहनकर 14 साल कम से कम राजा बनने का मौका था अधिकार के द्वारा। राम जी ने भी कहा था मेरे आदेश पर तुम राज्य करो, जब मैं आऊँगा तो फिर अगली बात है, लेकिन 14 साल तो तुमको रहना ही है, मेरी अयोध्या को, मेरे पिताजी की अयोध्या को संभालना है। तो अगर वो राजवस्त्र पहनकर अच्छा ऐशो आराम के साथ में रहते तो कोई गलत काम नहीं था, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि मैं आप जैसा ही रहूँगा, जैसे आप रह रहे हो वैसे ही रहूँगा, क्योंकि आप राजा हो, आप वन में घूम रहे हो मैं भी वन में रहूँगा, आप कंदमूल खा रहे हो मैं भी कंदमूल खाऊँगा। मौका होते हुए भी त्याग कर रहे हो भाई के प्रेम की वजह से, कोई उच्च आदर्श के लिए, वो एक श्रेष्ठ आदर्श उनके सामने है उसके लिए वो त्याग कर रहा है, जो मुमकिन है फिर भी उसका त्याग कर रहा है। और क्या वादा करके बैठा है कि तुम 14 साल के बाद में एक क्षण भी लौट आए लेट आओगे ना तो मुझे मरा हुआ पाओगे, ऐसा नहीं कि तुम एक साल और लेट आओ फिर मैं और एक साल राज करूंगा और राजा बनूंगा, ऐसा नहीं है। वो जो खुद का है उसका वो उसका भोग ले सकता है फिर भी उसको त्याग कर रहा है। और रावण क्या कर रहा है, जो उसका नहीं है वो उसको खींचने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ, एकदम उल्टा कल्चर है। जो तुम्हारा नहीं है फिर भी वो उसको छीनने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हारा है फिर भी वो छोड़ रहा है किसी के प्रेम की वजह से। ये केवल भक्ति में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। अगर भरत भगवान के भक्त ना होते तो ऐसी उच्च भावना वो नहीं बना सकते अपने लिए, कौन करता है ऐसे। हाँ, दुनिया पत्थर मार रही है, दुनिया लांछन के दे रही है कि तुम्हारी वजह से हुआ सब, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम ही इसके सब कारण हो, राम के वनवास के भी जड़ तुम ही हो, ऐसी बदनामी हो रही है, निंदा हो रही है, फिर भी वो राम की सेवा में लगे हैं क्योंकि वो भक्त थे भगवान के। एक भक्ति ऐसा कर सकता है, ऐसी प्रतिकूल अवस्था में भगवान की भक्ति केवल भक्ति कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोगों को विनती, आप लोग भगवान के नाम का जप करो, भगवान का भजन करो, आपके अंदर भी ऐसी दिव्य बुद्धि, दिव्य चेतना, दिव्य भावना आएगी और आप भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यशस्वी हो जाओगे। हाँ, सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।